SBS हिंदी सेवा के श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के कुछ प्रमुख समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो दिन चली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच शनिवार को संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मंत्री मॉरिस पेन और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सामरिक महत्व के मुद्दों जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता और शांति, अफगानिस्तान की स्थिति और आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने के अलावा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी रणनीति, रक्षा उद्योग और व्यापार, आर्थिक सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए वार्ता का सार बतलाया।
2+2 डायलॉग इंडिया ऑस्ट्रेलिया कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के महत्व को दर्शाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है जो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन के शेयर्ड विजन पर पूरी तरह से आधारित है। दो लोकतंत्रों के रूप में पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। आज हमने बाइलेटरल और रीजनल इश्यूज पर मिनिस्टर पेन और मिनिस्टर डटन के साथ गहन और व्यापक चर्चा की है।
श्रीमती मॉरिस पेन ने भारत के साथ संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा,
It is an important step today, with the 2+2 meeting marking another success stemming from our comprehensive strategic partnership and from the undertakings that we are pursuing. Australia and India share a positive vision of a free, open, secure, inclusive Indo-Pacific. As maritime powers and outward-looking democracies in the Indo-Pacific, our cooperation is essential. We've talked today about many things, but including the strong and enduring Australia-India relationships in trade, in community links, in cyber and climate and defence. We have shared views on the challenges of the East China and South China Seas, of Myanmar and of Afghanistan.
Dr. S. Jayshankar ne Australia ke saath hui vaarta mein Afghanistan par charcha ko behad zaruri bataya.
During the 2+2 dialogue, we also exchanged views on developments in our neighboring regions. Afghanistan was understandably a major subject of discussion. We agreed that the international community must be united in its approach, guided by UN Security Council Resolution 2593.
श्री पीटर डटन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधी बढ़ते रिश्तों के बारे में बताते हुए कहा,
India is a rising Indo-Pacific great power and an increasingly significant security partner for Australia, particularly in the maritime domain. We both depend on free and open access to sea lanes in the Indo-Pacific for our trade and economic well-being. And we share an unwavering commitment to upholding the rules-based international order and ensuring the Indo-Pacific is open, inclusive and indeed prosperous.
2+2 वार्ता को चीन के इंडो-पैसिफिक रीजन में बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले साल के विधानसभा चुनावों को देखते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने भारी फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री की कमान श्री विजय रूपाणी से लेकर श्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। श्री पटेल ने अपने चुने जाने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा,
मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे।
प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस फेरबदल की वजह कोरोना कुप्रबंधन से जनता में उपजे गुस्से को शांत करना बताया है। गुजरात कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस बदलाव को दिल्ली द्वारा थोपा गया निर्णय बताया।
जो पुराने सीएम और उनकी पार्टी के द्वारा प्रदेश के में जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना हुआ है, नए मुख्यमंत्री के तौर पर क्या ये रोजगार पैदा कर पाएंगे, क्या ये लोगों को नई उम्मीद दे सकेंगे, क्या किसानों को बर्बाद होते हुए बचा पाएंगे, बहुत सारी चुनौती है इस मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि उनके पुराने मुख्यमंत्रियों ने और उनकी पार्टी के लोग इस राज्य की नीति और दशा तय नहीं कर पाए।
गुजरात राजनीति के जानकारों के अनुसार कोरोना के अलावा अन्य कारण पार्टी के अंदर आपसी कलह को शांत करना और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से नाराज पाटीदार समाज को तरजीह देना है। पाटीदार या पटेल गुजरात में सबसे ताकतवर समुदाय माना जाता है, जो चुनावों में किसी भी पार्टी को हराने या जिताने की क्षमता रखता है। कांग्रेस ने पटेलों के युवा चेहरे हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर इस समुदाय में अच्छी पैठ बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने के कारण गुजरात में बड़ी जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है। और अब बात किसान आंदोलन की। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर हरियाणा सरकार द्वारा न्यायिक जांच का आदेश दिए जाने से किसानों और सरकार के बीच नए टकराव की स्थिति टल गई है। यह जांच उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और एक महीने के अंदर पूरी होगी। हरियाणा सरकार के एक आला अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा,
इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव एक माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के दो परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल।
इस आदेश के बाद किसानों ने करनाल मिनी सचिवालय से अपना धरना उठा लिया है, लेकिन साथ ही चेताया भी है कि इस जीत से ताकत पाकर 3 बिलों की वापसी और एमएसपी से संबंधित आंदोलन अब और रफ्तार पकड़ेगा।
और बड़ा भारी उत्साह के साथ इस निर्णय को लोगों ने स्वीकार किया है, इससे बड़े हौसले बढ़ेंगे आंदोलन।
सफलताओं से हौसले बुलंद होते हैं हमेशा, और इसे ये संघर्ष की जीत है, संघर्ष के बगैर जीवन नहीं है और जो किसान का संघर्ष है वो रंग ले आया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर दायरे के भीतर आने वाले मथुरा और वृंदावन के 22 वार्डों में मांस और शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। राज्य सरकार का यह फैसला उच्च न्यायालय द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी मस्जिद भूमि विवाद पर निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने के फौरन बाद लिया गया। इस फैसले को सही ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती अनिला सिंह ने कहा,
I think it is a beautiful, fantastic step taken by the Chief Minister of Uttar Pradesh and what is the requirement of having meat and liquor there?
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री अनुराग भदौरिया ने इस फैसले को जनता का ध्यान भटकाने वाला फैसला बताया।
जानबूझ के इस इश्यूज को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उन्हें जनता का ध्यान डाइवर्ट करना है कि बच्चों की मौतें हो गई, 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें, हर जिले में बच्चों की मौतें हो रही है, इससे इसके बारे में कोई सवाल ना पूछे। इसी तरह से उन्होंने जैसे कोविड में लोगों की मौत हुई, किसान धरने पर बैठा है, महंगाई बेरोजगारी से लोगों की लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस पे बात ना हो पाए, वो इस सब चीजों को इधर से उधर उधर से इधर जनता का असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में 30 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। यह चुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए पद पर बने रहने के लिए जरूरी है। सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका टिबरेवाल को उतारा है। अपने चुनाव क्षेत्र में कालीघाट मंदिर में पूजा करने के बाद श्रीमती टिबरेवाल ने मीडिया से बात की।
देखिए, मेरी लड़ाई तो मैंने आपसे कहा उन लोगों के विरोध में है जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया, हिंसा की, और वो पार्टी कौन है? वो पार्टी यहाँ की सरकार है, तो मेरी लड़ाई तो सीधा सीधी सरकार के साथ है, और पार्टी के लिए कौन यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं।
जवाब में तृणमूल के एक नेता श्री मदन मित्रा ने ममता बनर्जी की जीत को मात्र औपचारिकता बताते हुए कहा,
ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, सबसे पहले मैं एक इंसान। ममता की चुनाव भवानीपुर का बंगाल का एक फेस्टिवल है।
आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा से मनन कुमार का आप सभी को नमस्कार।